أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بجي محمد وعلى ایک کلاس اس موضوع پہ پہلے ہو چکی ہے کہ دینی طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں۔ دیکھیے، علم تو حاصل ہوتا جاتا ہے، یہ بات بھی پچھلی مرتبہ آئی تھی کہ شیطان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء کو بہکانے کی کوششیں کرتا رہا ہے، تمام علماء اور صالحین کو بہکانے کی کوششیں کرتا ہے، دینی لحاظ سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو دین کا علم رکھے گا تو اس کے برخلاف بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو جب تک نورانیت اندر پیدا نہ ہو اور للہیت دینی طالب علم میں نہ آئے، تب تک ممکن ہے کہ کچھ اصطلاحات کا علم اس کے پاس آ جائے، ممکن ہے علم میں کچھ بڑھ بڑھ کے زیادہ بولنے لگے، لیکن جو اصلاً اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ پیدا نہیں ہو پاتی۔ دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ انسان بعض اوقات بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بزرگی نہیں آ پاتی۔ بہت سے بوڑھوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی فتنہ پروری مچا رہے ہوتے ہیں، خاندانوں میں گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن بزرگی نہیں آئی۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ایک شخص عالم دین ہو جائے، دینی طالب علم ہو، اور اس کے اندر نورانیت نہ آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بے عمل افراد ہوتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سوائے ان دو افراد کے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یا تو عالم دین ہوگا یا پھر طالب علم ہوگا، ان کے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہے ایک دینی طالب علم کا، اور یہی دینی طالب علم بعد میں اور مزید ترقی کر کے عالم دین بن جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کون سا والا، سب سے پہلے تو دماغ میں یہی سوال اٹھتا ہے نا کہ آخر کون سا علم جو ہے وہ اکثر لوگ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی علم کے لحاظ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اہمیت کس کی زیادہ ہے، دینی علم کی یا دنیاوی علم کی۔ دیکھ، تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو قربتاً اللہ حاصل کی جائے اور جس کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، وہ دینی علم ہے، خواہ وہ بظاہر کی اتنا ہی دنیا کا علم کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ہر وہ چیز دنیاوی شمار ہوگی، غیر خدا والی شمار ہوگی، کہ جس میں للہیت نہ ہو، اللہ کی طرف انسان کا دماغ نہ جائے، بلکہ اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو، تو وہ خواہ بظاہر دینی علم ہی کیوں نہ نظر آئے، وہ دینی علم وہ اللہ کے لیے شمار نہیں ہوگا۔ لیکن جو اصل دینی علم ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی یہی بات اپنے فتوے کے اندر فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اس وقت، کہ زیادہ موجودہ حالات میں جو دینی علوم ہیں یہ مقدم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جتنی بڑی تعداد کے اندر، اب مثلا آپ کہیں گے بھائی ڈاکٹری بھی تو کرنا ضروری ہے، تو اتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں کہ معاشرے کا نظام کو کوئی خطرہ نہیں، انجینئر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ بے روزگاری کی حد تک معاملہ گیا ہوا ہے، معاشرے کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں، اسی طریقے سے اور جو فیلڈس ہیں۔ لیکن دینی علوم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت کم ہے، کسی بھی علاقے کے اندر جائیں، لوہار شخص کے کتنے انفرادی مسائل ہوتے ہیں، ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کو پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں علماء کی تعداد نہیں۔ تو موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر دینی علم حاصل کرنے جائے گا تو دنیاوی علوم کو پورا چھوڑ دے گا، آپ اپنی تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اپنی جابس کے ساتھ بھی انسان اتنا دینی علم حاصل کر سکتا ہے جتنی شریعت اسلام کے نزدیک وہ چیز واجب ہے اس کے لیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور देखिए इसके अंदर उम्र की भी कोई कैद नहीं है, उम्र की। वैसे कहा जाता है कि जवानी का दौर सबसे बेहतरीन है इल्म दीन हासिल करने के लिए, लेकिन अधेड़ उम्र में भी कोई हासिल कर सकता है, बुढ़ापे में भी हासिल कर सकता है, लेकिन आम तौर पर उस जमाने में हालात इतने ख़राब हो चुके होते हैं, सेहत के एतबार से मसाइल होते हैं, दीगर चीज़ों के हाफिजे के एतबार से मसाइल होते हैं, तो सबसे बेहतरीन दौर जो है ये जवानी का दौर शुमार होता है। और ख़ास तौर पर वो अफराद या ख़ास तौर पर वो ख़वातीन के जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड शुमार होता है, गोल्डन। तो उस लिहाज से वजह इसकी एक तो ये भी बनती है कि जो भी शख्स जवानी के दिनों में इल्म हासिल करता है तो वो पत्थर पर नक्श की तरह से होता है, जिस तरह पत्थर के ऊपर लकीर होती है ना, इस तरह से उसके दिल पर जम जाता है। और बूढ़ा का इल्म हासिल करना ऐसे जैसे समंदर के ऊपर कोई तहरीर, यानी पानी के ऊपर अगर आप कोई तहरीर भी लिखें तो वो कहाँ रह पाएगी, थोड़ी देर के अंदर ही वो मिट जाती है। तो जब तक जिन खवातीन की खास तौर पर शादियां नहीं हुई, वो इस मौके को बहुत बहुत गनीमत समझें, क्योंकि उसके बाद इतनी मसरूफियात और एक खानगी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो बहुत ही अहम बात है ये, इसको इस पीरियड को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और वाकईतन इल्म दीन एक ऐसी चीज़ है कि उलमा, बड़े बड़े उलमा इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते रहे कि परवरदिगारा ये इतनी बाफजीलत चीज़ है कि इसका सिलसिला हमारी नस्लों में भी जारी रखना। यही वजह है कि आयतुल्ला शेख जाफर आले काशिफुल गिता, कशफुल गिता उनकी किताब का नाम था, जो जिसके लिहाज से उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत है शेख जाफर की, तो उन्होंने बाकायदा खाने काबा को देखते वक्त जब भी उम्रे के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे, तो वे दुआ करते थे परवरदिगारा मेरे ख़ानदान और औलादों को भी फकीर बना दे। और परवरदिगार ने जब उनकी इस कदर तड़प देखी थी तो उनकी दुआ को कबूल किया था और उनके ख़ानदान के अंदर नामवर फकीर पैदा किए। यानी इतनी अहम चीज़ है इल्म दीन के हवाले से कि उलमा बाकायदा इसके लिए तड़प तड़प कर दुआएँ करते रहें। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बेतवज्जुही इल्म दीन के मामले में होती है कि जो कुछ ना कर पाए और बिल्कुल फिसड्डी तालिब इल्म हो, उसको सोचते हैं भाई चलो इसको मौलवी बना दिया जाए। वरना कोई मेडिकल कॉलेज में हो, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो, किसी का मसलन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के किसी इदारे के अंदर दाखिला हो गया हो, तो फिर कहाँ वो इल्म दीन वगैरह के अंदर उस एक हकारत का एक एहसास होता है। दोनों को साथ बिठा दें कि ये दीनी तालिब इल्म है और ये जनाब अली मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं, तो उससे लोगों को पता चल जाएगा कि आपको वो बिल्कुल फिसड्डी समझा जाएगा और उनको जो है कोई खलाई मखलूक समझा जाएगा। तो बहरहाल तो उलमा इस तरह से इस सिलसिले को जारी रखते हैं, दुआएं करते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह से तबलीगात वगैरह के अंदर लगाते हैं कि आयतुल्ला शेख जवाद तबरेज़ी अब तो खैर मरहूम हो गए, लेकिन कभी भी अपने दर्स का न सिर्फ पढ़ाने का नागा नहीं करते थे, शदीद बीमारी में भी मिलता है उनके हालात में कभी उन्होंने तातील नहीं की और बीमारी के दौरान भी पढ़ाने आते थे। बल्कि एक तालिबे इल्म कहते हैं एक दिन शदीद बर्फबारी हो रही थी, हत्ता कि यानी वाकई में ये कि शागिर्द तक परेशान थे कि इसमें दर्स पढ़ने जाएं या नहीं, लेकिन यही आयतुल्ला शेख जवाद तबरेज़ी बर्फबारी में बर्फ के ऊपर चलते हुए हाथ में वसाइलुशिया लेते हुए मस्जिद आजम की तरफ लोगों को जाते नजर आए। ये तमाम मराजे का सिलसिला है। आयतुल्ला वहीद खुरासानी आपको पता है कि तकरीबन 100 साल की उम्र के करीब पहुंच गए हैं, अब कहीं जाकर उनका कुछ ही अरसे पहले दर से खारिज अब जाकर मुअत्तल हुआ है, यानी अब वाकईतन इस काबिल नहीं रहे कि वो, वरना वो अब बस में अपने बेटे के साथ बैठकर दर से खारिज के लिए आया करते थे और उसके बाद इतनी उम्र में भी। तो ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ है कि इंसान इल्म मुसलसल हासिल करता जाए और ऐसी उसके अंदर इखलास की सिफत पैदा हो जाए तो उसके अंदर वाकईतन नूरानियत पैदा हो ही जाती। अच्छा, नूरानियत उस लिहाज से पैदा करने के कुछ अलग से भी आमाल रिवायात में बताए गए हैं जो हमारे पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें पैगंबर ने हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुमला इरशाद फरमाया। पहली 5 चीजें दिल को नूरानी बनाती, एक तो उसमें एक है रोजाना सूरह इखलास को बकसरत पढ़ना, सूरह इखलास को बकसरत पढ़ना। इब्तदान जैसे कि अभी शायद आगे चलकर भी गुफ्तगू में जिक्र आएगा, रोजाना 11 मरतबा कम से कम सुबह और 11 मरतबा सोने से पहले तो उसका जरूर एहतमाम करें, और उसमें भी बहुत ही वाकयातन जिसे कहा जाए कि नूरानियत को अगर अपने अंदर पैदा करनी है तो ये 11 मरतबा अगर आप सुबह में पढ़ें और 11 मरतबा सोने से पहले इसको पढ़ें और उसको हदिया कर दें अपने इमाम जमाना अलैहि सलातो वस्सलाम के। तो इससे आयतुल्ला वहीद खुरासानी बात बयान फरमाते हैं कि इसका इस तरह से पढ़ना और इमाम जमाना को हदिया करना, ये यानी बहुत ही अजीम मुकाम आपको दिलवाएगा। और दूसरी चीज़ है कम खाना, इसकी भी बहुत, वैसे तो इंसान जितनी भी अपनी जिस्मानी नीड हो उसके मुताबिक खा सकता है, लेकिन उससे कुछ भूख कम रख के अगर खाए तो पुरखोरी वगैरह से, वैसे भी आदमी ज़रा कुन जहन होता है, सारा ब्लड सप्लाई पेट की जानिब हो जाती है, दिमाग को खून की सप्लाई उस वक्त कम पहुंचती है जब जब भी आपको खाना खाने के बाद गुनूदगी वगैरह महसूस होती है, और हर वक्त पेट इंसान का भरा ही रहे तो फिर वो कुन जहनी और शकावत और सख्त दिली वगैरह पैदा होती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो नूरानियत बनाती है, नूरानियत पैदा करती है, वो है कम खाना। तीसरी चीज़ है उलमा की हमनशीनी। अच्छा, उलमा की हमनशीनी एक तो फिजिकली भी जाहिर है होता है कि मसलन उलमा के पास जा रहे हैं बैठ रहे हैं, लेकिन ख्वातीन के अतबार से अगर हम गुफ्तगू करें तो उसमें उनके पास इतने मौके नहीं होते, लेकिन अब गोया उलमा खुद ही आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू और दीगर, यानी उलमा की हमनशीनी के से मुराद ये थोड़ी कि बस उनके साथ सिर्फ बैठे के करनी है, इल्म हासिल करना ही मुराद होगा जाहिर है कि जब भी नूरानियत पैदा होगी। तो ये तो घर बैठे तमाम आलिम आपके मोबाइल फोन के अंदर और आपके लैपटॉप और उसके अंदर ही मौजूद हैं, और उनसे उलमा से हमनशीनी से अंदाज से पैदा, बड़े बड़े उलमा और मराजे के दर्स वगैरह, बल्कि अब तो तर्जुमा शुदा आपको क्लिप्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो उस लिहाज से मसलन अगर आप वसाइलुश शिया का मुताला कर रही हैं या मसलन आयतुल्ला दस्तगैब शिराजी की किताब का मुताला कर रही हैं, तो गोया उस वक्त आप आयतुल्ला दस्तगैब शिराजी आपको दर्स दे रहे हैं, आप उनकी किताब पढ़ना गोया उनकी उलमा ही की हमनशीनी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और इसके अलावा ये है कि जैसे कि अभी आगे चलकर तस्करा भी आएगा, नमाज शब की अदायगी, ये चौथी चीज़ है, नमाज शब की अदायगी। तो नमाज शब की अदायगी ये भी अगर रोज़ाना तालिब इल्म अपना रखे और 11 रकात नहीं पढ़ सके तो 3 रकात से इब्तदा करे, उसके बाद 1 रकात, अगर 3 भी मुमकिन नहीं है तो 1 रकात से भी इब्तदा कर सकता है, लेकिन 1, 3 और फिर उसके बाद बहरहाल पूरे फायदे 11 रकात को पढ़ने से ही हासिल होंगे। बहुत मुश्किल अगर किसी को लग रहा है, हालांकि मुश्किल लगना नहीं चाहिए, आयतुल्ला सिस्तानी वगैरह के नज़दीक तो देखिए कितनी आसानी है कि नमाज ईशा के फौरन बाद भी आप नमाज शब पढ़ सकती हैं, उनके नज़दीक वक्त शुरू हो जाता है, चलते फिरते आप पढ़ सकती हैं, गाड़ी चलाते वक्त जो है वो मसलन ड्राइव पे आप कहीं जा रही हैं उस वक्त पढ़ सकती हैं, यानी बैठे बैठे पढ़ सकती हैं, बस क़िबला रुख हो गए और बैठे हुए हैं आप, कोई किताब पढ़ रही हैं कुछ है हाथ में, आप क़िबला रुख हों और बैठे बैठे जो है वो नमाज शब पढ़ लें, रुकू और सजदा सर के इशारे से अंजाम दे लें। तो ये एक ऐसी चीज़ है। फिर है पांचवी चीज़, मस्जिद की तरफ जाना, मस्जिद की तरफ चलकर जाना, इसमें यकीनन नूरानियत है, लेकिन अब आप ख्वातीन के लिए भी वैसे कोई ममानियत तो नहीं कि वो मस्जिद जो है वो नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरह के नहीं हैं हालात, ख्वातीन का उस तरह से इंतज़ाम नहीं हो पाता हिजाब के एतबार से। तो मेरे एतबार से तो इंशाल्लाह मदरसे चलकर आना कमो बेश वैसे ही सवाब आपको दिलवा सकता है, बल्कि मुमकिन है कि शायद ज़्यादा ही हो जाए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकईतन नूरानियत पैदा करती हैं। जैसे कि आम तौर पर किसी जगह मैंने सुन भी रहा था कि आजकल वैसे तो ये चीज़ हो गई है कि सोशल मीडिया के जरिए आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन खुद जो दूर से बैठकर इसको सुनते हैं और जो यहाँ बिल्कुल सामने इस क्लास में इस नूरानी माहौल के अंदर जहाँ पर उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तस्करा होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, تو دونوں کی نورانیت جو ہے اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی یقیناً فائدے لوگ اٹھاتے ہیں, لیکن یہ کہ جو بنفس نفیس تو اکثر علماء تو بلکہ جہاں لائیو سٹریمنگ وغیرہ کے ذریعے جو تقاریر اور مجالس ہوتی ہیں تو کچھ جو بزرگ علماء ہیں وہ بند بھی کروا دیتے ہیں اس کو, کہ یہ چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کی امام بارگاہوں کو ویران کر دیں. کہ ہم جب گھر بیٹھے بستر پہ لیٹے ہوئے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی گھر پہ انسان اس تقدس کے ساتھ مجلس نہیں سن پاتا, ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ لیٹے ہوئے مجلس سن رہے ہیں اور بے توجہی کے ساتھ ہیں اور چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں, اس میں ویسا تقدس بھی نہیں آ پاتا. تو بہرحال ایک خاص مدرسے کا یا اس مجلس کے نظام کا سلسلہ ہے, لیکن بہرحال ابھی ٹیکنالوجی ایسی ہو چکی ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی چیزیں جو ہیں جتنی ممکن ہو انسان سنے. اچھا, اب طالب علم کے اعتبار سے جو ایک بہت اہم چیز ہے, کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالب علموں کے اندر بلند ہمت ہی نہیں آ پاتی اور وہ اپنا ہدف کوئی بڑا نہیں رکھتے. یعنی کوئی بڑا ہدف ہو, بڑا ویژن ہو, بڑا ٹارگیٹ ہو کہ مجھے جو ہے وہ کیا بننا ہے. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محنت کا کوئی خاص جذبہ طالب علموں میں نہیں نظر آتا, کوئی بلند ہمتی نہیں نظر آتی, کوئی بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے. اچھا, دنیاوی علوم میں لوگوں کے بڑے ٹارگیٹ ہوتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, ڈاکٹر بننے کے بعد اسپیشلسٹ بن جاؤں اور اس کے بعد یہ ہو جاؤں انجینئرنگ میں بھی اور فلاں, اور ہر شعبے کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا ایک بڑا ہدف ہوتا ہے. بچہ بھی بالکل ہوتا ہے تو کہتا ہے بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا, میں بڑا ہو کے سرجن بنوں گا, بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا. تو لیکن دینی طالب علم جو ہے اس کا کوئی چیز ہی نہیں سامنے ہوتی. بس جتنا دن جا رہے ہیں مدرسے جا رہے ہیں, جتنا پڑھ لیں گے پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہے. نہ کوئی, اسی وجہ سے جو بلند ہمتی اگر طالب علم کے اندر نہ ہو, یعنی باقاعدہ لوگوں کے اندر اتنے بلند ہمت اور کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ اچیو ہو جائے. بعض اوقات اتنے زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیاوی علم کے لحاظ سے کچھ علوم کے اندر اگر ان کو کبھی فیل وغیرہ ہو جائیں تو ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے بھی دیکھا. ایک زمانہ تھا, آپ لوگ تو ماشاءاللہ ساری چھوٹی ہیں, ایک زمانہ تھا کہ یہ نیٹی جیٹی کے جو پل تھا یہاں پر, باقاعدہ یہاں پر جب انٹر کا رزلٹ آتا تھا تو پولیس لگانی پڑتی تھی کہ جن کے نہیں آتے تھے اوپر سے چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ کیا ہے کہ اتنی اہمیت اس چیز کی ہے, جب اتنی اہمیت ہے تو انسان پھر اپنا ٹارگیٹ بھی بڑا رکھتا ہے. لیکن دینی علوم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے, یہ تن آسانی اور سہولیات جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, یعنی راحت جسمانی کے ساتھ اگر آپ چاہیں کہ بس ہر وقت میں بالکل آئیڈیل کنڈیشنز مجھے ملتی رہیں تو میں دینی علم حاصل کروں گی, ورنہ نہیں اس طرح سے حاصل کر پاؤں گی. تو کہا جاتا ہے کہ علم کو دیکھیے اس طرح سے حاصل کرنا چاہیے, اتنی تلاش اور محنت کرنی چاہیے کہ جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کرتی. کبھی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی ماں جس کا بچہ کھو گیا ہو, وہ کس طرح سے باہر اس کو ڈھونڈتی پھرتی ہے, اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی, اسے کوئی کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی, کسی اپنے لباس کی پرواہ نہیں ہوتی, بعض اوقات حجاب بھی اس کا مکمل نہیں ہوتا, اور اسے کسی کروٹ چین نہیں آتا کہ جب تک کہ میرا بچہ مجھ کو واپس نہ مل جائے. تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو علم کا, اس طرح سے علم کی تلاش ہونی چاہیے, اتنی زیادہ اس کے اندر محنت اور کاوش جو ہے ہونی چاہیے, اور کبھی اس میں کوئی سٹاپ نہ لگے, کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہ کھڑی ہو. اور کہا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اگر اس کو یہ گمان ہو جائے کہ بس اب میں نے کافی علم حاصل کر لیا اور میرا علم اب مکمل ہو چکا ہے, تو وہ سمجھ جائے کہ اب اس کے جہالت کے دور کا آغاز ہو گیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھے, یہاں کتنے بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کو ہم دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی ان عظیم مراجع میں سے ایک ہیں, کہ زیادہ تر ان کے ہاتھ میں, سوائے اس کے کہ جس وقت وہ زائرین وغیرہ سے ملتے ہیں, زیادہ تر آپ کا تو اسی وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے یا ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ جب زائرین ہوتے ہیں ان سے مسافیہ کرنا ہوتا ہے, لیکن ہر وقت جس کے ہاتھ میں کتاب رہتی, آیت اللہ سیستانی ان میں سے, ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب ہے, سوائے کہ کچھ خاص مواقع جب زائرین وغیرہ سے ملاقات کرنا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اور ان کو عمومی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں چیز. تو کبھی بھی علم کا سلسلہ رکتا نہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس دو سال حاصل کر لیا, ڈھائی سال حاصل کر لیا, چھ مہینے حاصل کر لیا, اور بس ایک دم سے بس فیلڈ میں آ گئے, اب علم کا سلسلہ بھی ویسا رک گیا, और अपने आप को इल्म को बहुत काफ़ी समझ लिया गया कि मैं इतने दिन जो है मैंने मसलन मदरसे के अंदर पढ़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि देखिए इल्म उस वक्त सही मायनों में हासिल किया जाएगा कि जब जराए इल्म के अलावा इंसान अंधा गूंगा बहरा लूला लंगड़ा बन जाए। देखिए एक जुमला जो है वो कहा जाता है, अंधा बन जाए, यानी अब फजूल ड्रामे वगैरह देखना एक दीनी तालिबे इल्म के शायाने शान नहीं। ये क्या आप सोचें कि फजूल, अगर ड्रामों और फिल्मों के लिहाज से अगर आप देखें, एक फैंटेसी है, एक ख्याली दुनिया है, कुछ लोग अपने माली उसके लिए एक बाकायदा एक स्टेज टाइप का वो करते हैं कि तुम ये कहना तुम ये कहना है, कैमरा लगाया हो उसको आप ऐसा देख रही हैं जैसे कोई बहुत रियलिटी है। ये ख्याली दुनिया है, ये इंतहाई अबस, अहमकाना, बेवकूफाना और वैसा काम है। अगर आप जरा सा वो करें और यहाँ पर करोड़ों की तादाद के अंदर जो है वो ड्रामे जो है वो व्यूअरशिप के अतबार से देखे जा रहे हैं, तो ये इंतहाई तो कहा जाता है कि हकीकी तौर पर जो दीनी तालिब इल्म है कम से वो ऐसा है कि जो अंधा गूंगा बहरा लूला लंगड़ा हो जाए। लेकिन किस मानों में अंधा हो जाए कि फजूल चीज़ें मुझे कुछ नहीं देखनी, तब वो उसमें कुछ नूरानियत पैदा होगी और इल्म हासिल जो है वो करेगा। बहरा बन जाए, गीबतें किसी की नहीं सुन रहा है वो, झूठ और गलत बयानियां या रिश्तेदारों के खिलाफ जो जितना कुछ आप सुनती हैं कहीं पे ऐसा हो तो आप उठ के वहां से चली जाएं। कानों को अपने, क्योंकि ये चीजें जब कानों के अंदर आपके जाएंगी तो ये नूरानियत को पैदा होने से रोकेंगी। तालिब इल्म को इस अंदाज से बहरा होना चाहिए कि ये वाली बातें सुनने ना सुने वो। इसी तरीके से मसलन गूंगा हो जाए, अब जुबान से गीबतें नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए, इस लिहाज से गूंगा बन जाए, लंगड़ा बन जाए, फजूल किस्म की जो तकरीबात हैं, मेहंदियाँ और मांझे और फिस्को फजूर की महफिलें और मिक्स गैदरिंग और ये इस तरह की जो चीज़ें जहाँ पर होती हैं कुछ लोगों से बातें सुननी पड़ेंगी, तो क्या हो गया? आपको तो एक बड़ा हदफ और मुकाम को हासिल करना है। या ऐसी सिर्फ तकरीबात और वो देखें जहाँ पर इस किस्म की चीज़ें ना हों, या उसको रुकवाने की कोशिश करें बगैर किसी लड़ाई और झगड़े के समझा के। तो इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों से जब एक दीनी तालिबे इल्म माजूर हो जाएगा, अंधा गूंगा बहरा लंगड़ा इस अंदाज से हो जाएगा कि ये चीज़ें, तो फिर उसके अंदर हकीकी तौर पर एक नूरानियत आएगी और वो उसकी रूह उतनी ही सालिम होती चली जाएगी। वरना बज़ाहिर ये सब चीज़ें वो उसके हाथ पांव सब कुछ नज़र आ रहे हैं लेकिन उसकी रूह बीमार होती चली जा रही है, रूह अंधी हो रही है, रूह बहरी हो रही है, रूह लंगड़ी हो रही है, जो है रूह गूंगी हुई चली जा रही है। तो इससे बेहतर है कि इंसान इन चीज़ों से अपने आप को बचाकर जो है वो नूरानियत पैदा करे, जितना इनसे वक्त बचे उसको अपनी तालीम के ऊपर लगाए, तब उसमें नूरानियत पैदा होगी। आयतुल्ला बहजत के पास एक तालिब इल्म आया जिसने कहा कि मैं आगा, मैं 27 साल का हो चुका हूँ, मैं बेहतरीन तरीके से इल्म कैसे हासिल करूं? उम्र मेरी 27 साल हो चुकी है, मैंने बहुत पहले से तो हासिल नहीं किया, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। यानी 27 साल का भी उनके पास ये बात आकर कह रहा है। तो आयतुल्ला बहजत ने उससे कहा कि अगर तुम वाकयातन इल्म हासिल करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो पहली बात उसके अंदर यह है कि तुम जब भी कोई तुम्हारे दिमाग में सवाल उठे या कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसके सवालात यानी सारे नोट करो और उसके बाद अपने उस्ताद से, किसी साहिब इल्म से उसके जवाब पूछो। यानी अपने सवालों को बिल्कुल अनअटेंडेड ना छोड़ो, यानी बस दिमाग में सवाल हुआ उभरा कोई हमें, लेकिन उसकी परवाह नहीं। तो इससे तुम इल्म मजीद सवाल से सवाल हासिल करते चले जाओगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब इब्तदाई तौर पर हासिल करना शुरू किया था तो इज्तिहाद और तकलीद से मुतालिक जो हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सादिक हसन साहब क़िबला, तो उस ज़माने में ख्याली सवाल भी बनाता था और वो शायद तंग भी हो जाते होंगे उससे। तकरीबन 1000 सवाल मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इज्तिहाद और तकलीद के मुतालिक जितने ही मुमकिन हो सकते थे वो मैंने बनाए, पूछे और एक ग्रिप हासिल करने की उसमें कोशिश की। तो बहरहाल यानी सवाल से मुराद ये नहीं कि बस दिमाग में आए, तो नहीं, आप खुद से सोच के सवालात निकालें, अच्छा ये ऐसा हो जाए तकलीद में तो फिर क्या मसला होगा, और वैसा हो जाए तो क्या मसला होगा, और ऐसा हो जाए तो क्या मसला होगा। तो इससे क्या होता है कि ये आप देखें बहुत सी चीज़ें ना फ़र्ज की जाती हैं। आप देखती हैं तौज़ील मसाइल के अंदर भी बहुत सी चीज़ें फ़र्ज की जाती हैं, फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो जाए, तो इससे क्या होता है कि जब वो वाकईतन ज़िंदगी में आपके पेश आता है तो आपको उसका जवाब पहले से मालूम होता है, बनिस्बत है कि उस वक्त पेश आए फिर आपको कोई आलिम अवेलेबल ना हो और उस वक्त वो करना भी ज़रूरी हो, तो ये ग्रिप पहले से आपके पास हो। दीनी तालिबे इल्म तो ये है कि हर कोई, अभी आपका पहला दिन ही होता है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेडिकल कॉलेज में अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि लोग दवाएं पूछने लगे थे हमसे। तो इसी तरीके से आपसे शरई अहकाम पूछने लगते हैं, आपसे बैंकिंग का मसला पूछने लगता है, कोई आपसे क्रेडिट कार्ड का मसला पूछने लगता है, कोई फला चीज़ का मसला पूछने लगता है, और अभी आपको हुए हैं 1 महीना भी नहीं हुआ मसलन मदरसे आते हुए। तो ये लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। तो अपने इल्म को सवालात के जरिए आप बढ़ाते चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि एक तो बात ये है कि कभी भी तालिब इल्म को सवाल करने से नहीं शर्माना चाहिए। हर वक्त झिझक, अब तो उलमा से हद तक कि मराजे तक के व्हाट्सएप नंबर हैं, यानी वो खुद नहीं, उनके दफ्तर वाले जो है वो जो उनके मसाइल के मुताबिक जवाब देते हैं। तो अब तो हर शख्स के अपने हाथ में कोई सवाल हो, आज ही सुबह मैं कुछ सवालात यानी जो है भेज कर आया हूँ, यानी जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर उसके जवाब आए हुए होंगे। तो यानी इतने आसान हो गया है, ज़माना था, मुझे खुद याद पड़ता है कि मैं आयतुल्लाह खुई से ख़त लिख के बाकायदा सवाल पूछा करते थे, 6-6 महीने बाद वहाँ से तहरीरी तौर पर ख़त का जवाब आया करता था। तो अब तो इतनी सहूलियात हो गई हैं, अब तो कोई उजुर ही माने नहीं है, यानी आपके पास कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है मैदान कयामत में कि आप परवरदिगार के सामने कहें कि मुझे ये बात इस वजह से पता नहीं थी कि मुझे इल्म ही नहीं था इस बात का। तो अब तो हर चीज आपके हाथ में मौजूद है। तो एक तो चीज हो गई कि सवाल करने से ना शर्माएं। दूसरा उन्होंने एक और बात कही, कहा कि खास तौर पर जो चीज बहुत इल्म में काम आती है हमारे यहां आमतौर पर कुछ जगहों पे इसका रिवाज है, वो है कि खास तौर पर जो नमाजों की ताकीबात मुश्तरका हैं, आयतुल्ला बेहजत फरमाते हैं ताकीबात मुश्तरका, यानी एक तो कोई हर नमाज की एक तो अलग ताकीबात होती है, मसलन फजर की मखसूस ताकीबात ही हैं, जोहर की मखसूस ताकीबात ही हैं, कुछ आप मफाती के अंदर देखेंगी ताकीबात मुश्तरका के नाम से। उन्होंने कहा कि इल्म हासिल इनकी तुम इन पे मुदावे मत करो, एक नमाज भी ऐसी ना होगी जिसमें ताकीबात मुश्तरका ना हो, तुम खुद ही देखोगे कि उसके अंदर यानी इतनी उसमें अगर आदमी मुदावे मत करे और हमेशा उसको जारी रखे तो बहुत ज्यादा उसके इल्म में भी तरक्की होगी, नूरानियत भी उसके अंदर आएगी। और तीसरी चीज जो नूरानियत भी पैदा करती है और तालिब इल्म को मुश्किलात से भी निकालती है, वो आयतुल्ला अराकी ने बताई। आयतुल्ला मोहम्मद अली अल अराकी इमाम खुमैनी के भी असातिज़ा में से शुमार होते थे। ये कहते थे जब भी कोई इल्मी मुश्किल मुझे भी पेश आती तो मैं क्या करता हूं, मैं एक तस्बीह हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो मैं 14 मासूमीन को हदिया करता हूं, तो वो मुश्किल फौरी तौर पर हल हो जाती है। वाकईतन तस्बीह हज़रत ज़हरा के अंदर इतनी ज़्यादा पावर, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर बरकतें और खैर मौजूद है कि वाकईतन इसको तालिब इल्म को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ तस्बीह का रिवाज तो है पढ़ने का, लेकिन उसके अंदर इतनी उसको इतने अहतमाम से नहीं पढ़ा जाता है, सरसरी तरीके से एक फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ा जाता है। तो बहरहाल इसको बड़ा दिलजमई के साथ और फिर 14 मासूमीन को हदिया भी करें तो इंशाल्लाह देखेंगे कि इल्मी मुश्किलात भी हल होंगी और तालिब इल्म के अंदर नूरानियत भी आएगी। आयतुल्ला बेहजत से ये बात भी पूछी गई थी कि क्या करें कि हमारे अंदर मुसलसल इल्म और दानिश पैदा होता रहे, ये नहीं कि मसलन बस कुछ दिनों के लिए हुआ फिर उसके बाद ये सिलसिला रुक जाए, मुसलसल इल्म और दानिश पैदा करने के लिए। तो आयतुल्ला बेहजत फरमाते थे कि अगर तुम्हें यानी ये चाहो कि तुम्हारे अंदर मुसलसल इल्म पैदा हो और मुसलसल दानिशमंदी पैदा हो तो तुम कसरत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो, कसरत के साथ, यानी हर वक्त। आयतुल्ला मोहम्मद हुसैन तबतबाई फरमाते थे कि देखिए बहुत सारे अस्कार ऐसे हैं कि उसको जब आदमी करता है तो जाहिर है उसके होंठ हरकत करते हैं और लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कुछ पढ़ रहा है। कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा जिक्र है कि इसके अंदर होंठों को भी हरकत नहीं होती, चाहे तो कोई प्रैक्टिस करके देख ले। तो इस लिहाज से इसकी बड़ी अहमियत है कि इन चीजों को इन असकार को कसरत के साथ अंजाम दे। कसरत की किल्लत भी होती, एक होता है जाहिर कसरत, कितनी कसरत, वो तो 10,000 भी होती है, 20,000 भी होती है, 1,000 भी होती है। तो आम तौर पर जो रिवायात से बात पता चलती है कि कम से कम 100, या कुछ उलमा कहते हैं कि 300, और ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप अगर पढ़ने भी जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द इसको तो इसकी इसको जितनी भी कसरत के साथ पढ़ा जाए तो इससे क्या होता है, मुसलसल इल्म और दानिश पैदा होती। क्योंकि एक और भी चीज़ है, अगर आप देखें तो उलमा और मराजे ये कहते हैं कि ये चीज़ें ना शक और वसवास शैतानी को दूर करती। आम तौर पर जब आप इल्म हासिल करती हैं तो शैतान सबसे बड़ा रुकावट बन के खड़ा हो जाता है। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जो है ये शैतानी वसवसों को दूर करता है। आपका दिल यानी दिल भरने नहीं पाएगा इल्म हासिल करने से, वरना एक सेचुरेशन हो जाती है कि बस बहुत हो गया, बहुत हासिल कर लिया, या ये कि अभी दिल नहीं चाह रहा, अभी जरा टीवी देख लें फला चीज़ हो, तो ये शैतान आकर आपको आपकी कंसंट्रेशन को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत के साथ इसका विर्द करें। फिर आयतुल्ला बेहजत एक चीज और फरमाते थे कि ये जो सूरह सूरह आला है, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वो ये फरमाते थे कि ये हो सके तो ये पूरा ही सूरा पढ़ें, लेकिन खास तौर पर इसकी एक आयत है उसका कसरत से विर्द करें। सनुक्रिउका फला तंसा, ऐ रसूल हम तुमको कुरान इस तरह से पढ़ाएंगे कि तुम भूलोगे नहीं। कहते हैं कि खास तौर पर इस आयत को भूल के मर्ज से निजात दिलाने के लिए कसरत के साथ तिलावत करना चाहिए। सनुक्रिउका फला तंसा, यानी वैसे तो पूरी सूरह आला ही पढ़े तो बहुत ही अच्छा है हाफिजे के लिए, लेकिन इस आयत का अलग से कसरत के साथ विर्द करना ये आपकी याददाश्त को बहुत कवी बनाएगा, आपको भूल जाने का जो जिससे इंसान भूल जाता है मतालिब को, पढ़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, इससे इंसान बचेगा। सनुक्रियो का फला तंसा। और फरमाते थे उसके अलावा हर नमाज के बाद खास तौर पर यह इसकी कसरत हो सके तो आयतल कुर्सी की तिलावत, आयतल कुर्सी। इसमें फिर वही सवाल बार बार उठता है कि जनाब आयतल कुर्सी जो है वह अलीउल अजीम तक पढ़ें या हुम्फिया खालिदून तक पढ़ें। तो देखिए वैसे तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है इसका नाम है आयतल कुर्सी, आयातल कुर्सी नहीं। इसका मतलब है कि वह अलीउल अजीम तक एक आयत बनती है, यहां तक है, लेकिन उलमा इसमें ख़ासतौर पर अगर आप नमाज वहशत कबर वगैरह पढ़ रही हैं तो वो कहते हैं एहतियात इसी में है कि बाकी दो आयात भी पढ़कर हुम्फिया खालिदून तक पढ़ लें। तो वैसे आयतल कुर्सी जहाँ पर अमूमी तौर पर असकार वगैरह के अंदर नमाजों से हटकर कभी पढ़ना मुराद होती है तो उससे मुराद वहवल अलीउल अजीम तक है, लेकिन कोई मस्जिद दो आयतें पढ़ ले तो और शरफ और फजीलत उसको हासिल हो जाएगा, और कौन सा टाइम इसके अंदर लगेगा, आधे मिनट से भी कम के अंदर बाकी दो आयात भी हो जाएंगी, चंद सेकंड्स में बल्कि। तो ये तो कुछ असकार के हवाले से नूरानियत इनसे पैदा होती है, इनके ऊपर मुदावेमत करनी पड़ती है, इनसे हेल्प लेनी होती है। बाज़ों का तालिब इल्म इन चीज़ों से हट जाते हैं, कहते हैं हमें तो इल्म हासिल करना है, ये कौन दुआ असकार वगैरह के अंदर टाइम लगाए। तो ये इसके साथ मिलकर जो भी आप मेहनत करनी उसके अंदर एक बरकत पैदा करते हैं, ये असकार आपको शैतान से बचाकर उस राह के ऊपर आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। यानी इनको ऐसा नहीं है कि अलग से इसको अगर कोई करे तो सोचे कि मैंने इसमें वक्त ज़ाया हो रहा है हमारा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है इल्म हासिल करने के हवाले से, वो है इताअत वालिदैन। यानी जितनी उनके सामने फरोतनी होगी, जितनी आजजी होगी, जितनी उनसे आप, यहाँ पर हम देखते हैं शिकायत भी बाज़ औक़ात सुनने में आती हैं माशरे में कि इल्म भी हासिल कर रहे हैं लेकिन वालदैन के साथ तल्ख कलामी भी चल रही, ज़बान चलाना, उन्हें बुरा भला कहना, उनकी तौहीन करना, या मसलन उनसे बुलंद आवाज़ से बात करना, चीखना चिल्लाना, ये बिल्कुल एक राइज सी एक चीज़ बन गई। आयतुल्ला मरशी नजफ़ी, आयतुल्ला मरशी नजफ़ी, इससे अंदाज़ा लगाएं इसमें बचपन से ही आयतुल्ला जो छोटा बच्चा खड़ा है आयतुल्ला मरशी नजफ़ी तस्वीर, और ये अपने बाप और अपने दादा के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं, ये खुद खड़े हुए हैं, ये उनके बचपन की तस्वीर है। आयतुल्ला मरशी नजफ़ी कहते थे कि जब मेरे वालिद सो रहे होते थे, शायद पिछली दफ़ा भी मैंने ये जिक्र किया था, तो मैं उनको हाथ से नहीं उठाता था बल्कि अपने गालों को उनके पाँव के तलवे पर रगड़ रगड़ के मुझे बेअदबी सी महसूस होती थी तो मैं उनको इस तरह से उठाया करता था अपने वालिद को, यानी अपने गाल को चेहरे को उनके पांव के तलवों से सहला कर मैं उनको उठाता था। और मेरे वालिद जब उठते थे सो नींद से, जब मैं उनको जगाता था और नींद से सोकर उठते थे, तो हमेशा मुझे दुआएं देते हुए उठते थे। कह रहे हैं आज जो कुछ भी आप मेरे पास देख रहे हैं, दुनियावी तौर पर तो इस कदर दुनिया यानी दूर थे इन चीजों से कि मैंने एक दफा पहले बताया था कि पूरी जिंदगी उन पर हज भी वाजिब नहीं हो सका था, इतने पैसे नहीं थे। आयतुल्ला मरशी ने, जफी ने सारी जिंदगी हज नहीं किया और उसी हालत में इंतकाल कर गए। लेकिन इल्म के एतबार से जो पहाड़ शख्सियत उनकी हो गई, वो कहते हैं आज जो कुछ भी एक मरजैयत और लोगों का रुजू करना और दीन की खिदमात तुम मुझसे देख रहे हो, ये मेरे और उस वालिद की दुआओं का नतीजा है जो मैं उनको जिस अंदाज से उठाया करता था। उसके बाद आयतुल्ला मरशी नजफी जवानी के अय्याम उन्होंने जो है वो गुजारे, इल्म में मुसलसल आगे बढ़ते गए, अधेड़ उम्री के अंदर गए और उसके बाद बुजुर्ग हो गए। और आपको पता है कितनी बड़ी सआदत, 40-45 साल तक तकरीबन हरम मासूम कुम में नमाज जमात पढ़ाते रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो फरमाया कि इल्म के हासिल करने के लिए लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। वालिदैन हैं, ठीक है इल्म तो हम हासिल कर रहे हैं, इनसे अगर हम कुछ तल्ख कलामी कर भी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक नूरानियत पे फ़र्क पड़ जाता है, एक बेबरकती आपके इल्म के अंदर जो है वो आ जाती है। तो उनकी इज्जत और एहतराम को मजीद बढ़ा देना चाहिए। एक तो वैसे ही कोई आदमी तालिब इल्म दीनी नहीं भी हो तब भी उसको वालिदैन का इकराम करना है, लेकिन दीनी तालिब इल्म को तो बढ़कर इकराम करना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं होती हैं कि मसलन वो आपसे कह रही हैं कि ये काम कर दो वो काम कर दो, तो टालने वाला कभी ना करें और आगे बढ़कर बल्कि उनकी जरूरियात को पहले से महसूस करके उन तक आप को पहुंचना चाहिए। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि वालिदैन का एहतराम। देखिए एक जमाना यही था कि लोग पहले, अल्लामा इकबाल भी कहा करते थे मरहूम, कि पहले जो है इल्म इतना नहीं होता था लेकिन तालीम लोगों के पास ज्यादा हुआ करती थी। इल्म कम होता था, तालीम ज्यादा होती थी। और आजकल क्या हो गया है कि इल्म ज्यादा हो गया है, तालीम कम हो गई, तरबियत कम हो गई। तो ये कलमिया हो गया है कि हमारे पास समझे एक एक्सप्लोजन एक लिहाज से मालूमात और उसका हुआ हुआ है। हर वक्त व्हाट्सएप आ रहे हैं, वो हर वक्त आप चीजें पढ़ रही हैं, सारी किताबें उसके ऊपर मौजूद हैं, इंटरनेट के ऊपर हर वक्त पूरी दुनिया की सारी खबरें आपको मिल रही हैं। इल्म मुसलसल बढ़ रहा है पहले की निस्बत, लेकिन क्या है तालीम कम हो रही है। इल्म होना अलग चीज है, तालीम याफ्ता होना एक अलग चीज। हो सकता है कुछ चीजों में आपको ज्यादा मालूमात हो लेकिन तरबियत उस अंदाज की ना हो। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिनका ख्याल रखना चाहिए। फिर एक तालिब इल्म एक और भी चीज है कि मुताले के लिए अपने ऊपर गैर जरूरी सख्ती ना करें। इससे क्या होता है कि किसी हद तक तो खैर जरूरी होती है सख्ती करना अपने ऊपर, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि कुछ दिनों में वो उस चीज से मुतनफ़िर हो जाते हैं। तो सोच समझ के इंसान शौक और रग़बत के साथ चीजों को करे बनिस्बत इसके कि बहुत ज्यादा हमेशा उसको अपने ऊपर सख्ती करना पड़े। गैर मुताले के लिए गैर जरूरी सख्ती, मसलन ये कि रोजाना मसलन आपने अपना टाइम टेबल, आप सुनती है ना कि टाइम टेबल वाहिद वो चीज है कि जिसकी सबसे ज्यादा दुनिया में मुखालिफत होती, यानी इंसान कितने ही अब टाइम टेबल इंसान ऐसे बनाता है अपने कि 24 घंटे में से जो है वो 50 घंटे का टाइम टेबल होता है कि जनाब मैं इस तरह से, पता चला कि उसमें से 10% भी फॉलो नहीं कर पाता, 90% वैसे ही और थोड़े दिन बाद, क्योंकि उसने इतना सख्त टाइम टेबल बनाया अपना। तो मुताले के लिए सख्ती ना करें कि 3 घंटा मुझे लाजिमन फला चीज पढ़नी ही है, 2 घंटे पढ़नी है। उससे क्या होगा, चंद दिन तक तो सिलसिला होगा लेकिन मुतनफिर हो जाएगा, दिल उसका भर जाएगा, अपने ऊपर बहुत ज्यादा जबर अगर करना पड़ गया उसको। तो कोशिश ये करें कि अपने ऊपर इस अंदाज से सख्ती ना करें। कुछ चीजें उलमा ने ऐसी हैं जो अलग से टिप्स के तौर पर भी बताई हैं, वो है कि लेट कर कभी मुताला ना करें। और मेडिकल लिहाज से भी है कि आई साइट वगैरह पे जो है फर्क पड़ता है। और कोशिश करें कि कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ने की आदत डालें। अगर आपने बाकायदा एक इस पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी इंसान कर दे, बाज़ औक़ात होता है ना कहीं बेड पे लेटे हुए पढ़ रहे हैं किताबें, ऐसे ही जो टीवी का मॉनिटर है उसके पीछे किताबें फंसा के रखी हुई हैं, किसी कोई बाकायदा कोई जो है वो जगह ही नहीं है उनकी, तो कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ने से आपका बहुत ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाई होती है, सारी चीजें आपके सामने होती हैं, उस पर बैठने का भी एक खास तरीकेकार है कि आपकी कमर किस तरह से होनी चाहिए कि कंफर्टेबल हो, कमर में दर्द ना हो जाए, और इस पे इंसान अपने कंफर्ट पे पढ़ाई के एतबार से कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर दे तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ आमतौर पे ये देखने में आता है कि बस लोग सोचते हैं कौन कुर्सी मेज पे बैठे आराम से बैट पे लेट के टेढ़ा मेढ़ा भी बैठ के पढ़ के अपना काम चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो उस लिहाज से बात थी मुताले के एतबार से कि बैठकर पढ़ना चाहिए। एक और चीज है, वो है आइम्मा से तवस्सुल, क्योंकि हमारी बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि तालिबे इल्म अपने अंदर नूरानियत कैसे पैदा करें। तो आइम्मा से तवस्सुल के बगैर कभी भी वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। आइम्मा से तवस्सुल, बड़े बड़े उलमा मुज्तहिदीन जिनके अभी मैंने आयतुल्ला मर, ये तो खैर आयतुल्ला बेहजत हैं, ये अक्सर व बेशतर इस तरह से मासूम कुम के कब्र मुबारक पे आया करते थे। आयतुल्ला मरशी नजफी तो रोजाना नमाज शब का जो वक्त है वहां 3 साढ़े 3 बजे के करीब, यानी जिस वक्त उस जमाने में हरम के दरवाजे बंद हो जाते थे और हरम बंद हो जाता था रात के 12 साढ़े 12 बजे के करीब, जिस वक्त वो दरवाजे खुलते थे तो सबसे पहले अंदर जाने वालों में आयतुल्ला मरशी नजफी होते थे 3:30 बजे, और 45-50 साल तक से ये सिलसिला जो रहा है एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सआदत उन्हें ना हासिल हुई हो कि हरम मासूमा में दाखिल होने वाले सबसे पहले आदमी वो होते थे। तो ये तवस्सुल वाली बात है, यानी आइम्मा से तवस्सुल करना, मासूमीन से तवस्सुल करना, इन अजीम हस्तियों से तवस्सुल करना, यानी इंसान इनके वास्ते दे, इनके हवाले से अल्लाह से जो है वो दुआएं करे कि मुझे इल्म में आगे से आगे इनकी मदद शामिल हाल हो जाएगी, इनकी शिफात। शिफात देखिए सिर्फ गुनाहों के सिलसिले में नहीं होती, बल्कि शिफात नेकियों के सिलसिले में भी, दराजात की बुलंदी के सिलसिले में भी होती। बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि मसलन शिफात तो सिर्फ गुनाहगारों की होगी, जैसे कि वो नातों के भी अशआर है ना, मफहूम ये है कि उस दिन कयामत के रोज जो नेकोकार हैं वो भी गुनाहगारों की सफ में आके शामिल हो रहे होंगे, क्योंकि पैगंबर इस्लाम मसलन उनकी शिफात कर रहे होंगे। तो शिफात के मायने फकत गुनाहगारों के हवाले से नहीं है जैसे कि लोगों ने सोचा है, बल्कि नेकियों और दर्जात की बुलंदी के लिए भी शिफात। मसलन आपका दर्जा जो है वो जन्नत में है, उसको बढ़वाने के लिए भी शिफात, इल्म में मजीद तरक्की के लिए भी शिफात, नूरानियत पैदा करने के लिए भी शिफात। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये दिमाग में रहनी चाहिए कि आइम्मा से तवस्सुल किए बगैर इन मुकामात को हासिल नहीं किया जा सकता। फिर उलमा एक चीज और भी फरमाते हैं, जैसे कि खुद हाफिजे के लिए आयतुल्ला शुबैरिया जंजानी फरमाते हैं आगा नजफी के लिए, जो शेख तकी इस्फहानी के नाम से थे, कि जो हाफिजे की कमी से बड़े परेशान थे, तो एक मरतबा हरम इमाम हुसैन गए और जब कब्र इमाम हुसैन पे निगाह डाली तो तड़प कर इमाम हुसैन से तवस्सुल किया कि मौला अगर हाफिजा ना होगा तो मैं दीन की तबलीग कैसे करूंगा। कह रहे हैं उसी वक्त से ऐसा हाफिजा पैदा हो गया कि कुतुब अरबा की तमाम रवायात इस तरह से सनद और मतन के साथ हिफ्ज हुई कि जैसे उनके सामने तहरीर हो। तो आइम्मा से तवस्सुल, उलूम के खजाने हैं, सारी दुनिया को इल्म उनसे मिला है, उनके दर को छोड़कर आप इधर उधर कहां से इल्म हासिल करेंगे। उनकी निगाह करम हो जाए तो पिछली दफा ही आपने सुना था करबला एक काजिम सरूकी, एक बिल्कुल एक जाहिल शख्स और एक चश्मे जदन में हाफिज कुरान बन गया। ये कह रहे हैं कि मुझे कुतुब अरबा की सिर्फ सनद और मतन के साथ, जिस तरीके से फोटोग्राफिक मेमोरी होती है आपके सामने लिखी हुई कोई चीज होती है, इस तरह से मुझे याद हो गई। तो कितना बड़ा मुकाम इंसान जो है इन बुजुर्ग शख्सियात से मुतवस्सिल होके जो है वो हासिल कर सकता। तो इनसे मुसलसल इनको हदीये आप भिजवाएं, नेक आमाल के हदीये भिजवाएं, उसके साथ अपनी दुआ को लगाकर भेजें, और दुआएं भी अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, अपनी नूरानियत को बढ़ाने के लिए उस अंदाज से होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और भी है, वो है सूरह वशम्स की तिलावत, क्योंकि बीच में इसमें आ गई तो उसका भी कि परवरदिगार उसको बहुत ज्यादा तौफीकात नसीब करता है और उसका हाफिजा बढ़ता ही चला जाता है अगर कोई शख्स बाकायदगी से सूरह वशम्स की तिलावत करे। तो बहरहाल इसको भी अपने उसके अंदर मामूलात के अंदर शामिल रखें, और इसको डिवाइडेड दिन की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर आप रखें, क्योंकि कभी भी फारिग नहीं रहें। असल में ये देखा जाता है कि तालिबे इल्म बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, फारिग हैं, तो मसलन बैठे हुए घंटों टीवी देख रहे हैं, बैठ के घंटों मसलन डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, तो ये इस किस्म की फजूल एक्टिविटी से अपने आप को बचा के इसके ऊपर तालिबे इल्म लगाएगा तो नूरानियत पैदा होगी, वरना वो सारी नूरानियत ड्रेन हो जाएगी। कहा जाता है ना कि जनाब जितने भी एक इस वक्त एसी चल रहे हैं यहाँ पर, हम एसी भी चल रहे हैं, और ये सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दें और एग्जॉस्ट फैन लगा दें, थोड़ी देर में यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ इल्म को हासिल ही नहीं करना है बल्कि उसको महफूज भी रखना है, उसकी नूरानियत को भी महफूज रखना है। जिस तरीके से रमज़ान आता है, रमज़ान में इंसान तकवा हासिल करता है, पूरे साल के लिए वो एक महीने का तकवा काम आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो ईद के रोज ही सारा ड्रेन हो जाता है। कहा जाता है ना कि अगर कोई शख्स मसलन, खुद मेरे साथ ही हुआ था कि जब सबसे पहली सैलरी जिस जगह से मुझे मिली थी पहले दिन ही आया था, उसी दिन मेरी जेब कट गई थी मसलन। तो आदमी के यानी उसको अभी चलाना है पूरे महीने और उसी दिन उसके पास जेब कट गई, तो शैतान उस दिन जेब काटने को तैयार होता है ईद के रोज के, पूरे रमजान का इसका मैं आज जो तकवा इसने हासिल की आज इसको महरूम कर दिया जाए इससे। तो दीनी तालिब इल्म के पीछे भी बिल्कुल इसी तरह से लगा होता है, किस तरह से इसकी नूरानियत को मैं खत्म करूं, किस तरह, बस ठीक है हो सकता है कि इल्म हासिल करते जाएं लेकिन नूरानियत ना आ पाए शैतानी हरकतों की वजह से। फिर एक चीज़ और, उलमा कहते हैं और हाफ़ज़ा कवी करने के बहुत सारे खैर तरीके हैं, अभी मैं उस पर इतना डिस्कस नहीं कर रहा। दीनी तालिब इल्म को आयतुल्ला बेहजत खास तौर पर एक चीज़ कहते थे, वो पानी और गिज़ा के अंदर एतदाल, बल्कि अब ज़ाहिर डॉक्टरी एतबार से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दिमागों में लोग आजकल, डॉक्टर तो कहते हैं पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना चाहिए, आयतुल्ला बेहजत ये फरमाते थे कि दीनी तालिब इल्म पानी कम पिए। अच्छा, पानी भी कम और गिज़ा भी कम। अच्छा, पानी कम से मुराद ये नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ डिहाइड्रेशन हो जाए और अस्पताल वगैरह जाके ड्रिपें लगवानी पड़े उसको, मकसद है कि कसरत इतनी ज़्यादा ना हो जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर होता है कि बस पानी पे पानी, पानी पे पानी, या खाने पे खाना जो है वो खाते चले जा रहे हैं। तो वो कहते थे एतदाल के अंदर ये चीज़ रहे, बल्कि एतदाल एतदाल से ही रहे, लेकिन ये कि वो आम तौर पर कमी की फरमाइश करते थे, खास तौर पर जो जैसे दस्तूरुल अमल वगैरह तालिब इल्म लेने आते थे तो वो कहते थे गिज़ा और पानी का कम इस्तेमाल करो। तो बहरहाल ये चीज़ें भी हैं, और एक चीज़ और भी है जो कि दीनी तालिब इल्मों के लिए खास तौर पर उलमा अपनी उसके अंदर ताकीदात के अंदर कहते हैं, जब भी दीनी तालिब इल्मों को नसीहत करते हैं उलमा के खिलाफ जबान ना हिलाएं, क्योंकि अगर आपने उलमा, यहाँ ये होता है कि फौरन उलमा पर तनकीद, आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर और हर आदमी जिसको जो जी किसी आलिम की बात पसंद नहीं आई बस उसको फौरन जो है उसके ऊपर कोई ना कोई एक लेबल लगा दिया जाता है, कोई ना कोई एक लेबल, को गाली का लगा देगा, कोई को मुकसर का लगा देगा, कभी MI6 का एजेंट बना के लगा दिया जाएगा उसके ऊपर, यानी किसी ना किसी को बुरे अलकाब से मुलक्कब आपको जरूर करना है। तालिब इल्म अगर इन चक्करों के अंदर लग जाएगा कि उसके यानी तमाम उलमा का यकसा उसको एहतराम करना है, कभी किसी आलिम के खिलाफ जुबान ना हिलाए, अलबत्ता कोई बिल्कुल ही उससे हट जाए इस्लाम के ट्रैक से और बातिल कुव्वतों के हाथ में खेलने लगे और लिबास उलमा बज़ाहिर पहना हुआ हो उसने और उलमा भी उसके के खिलाफ हों उस शख्स के, तो फिर लेकिन बहरहाल दीनी तालिब इल्म को चाहिए कि अपने आप को इन झमेलों झंझटों से दूर रखे, क्योंकि जाहिर है कि वो अभी इब्तदाई उसके अंदर होता है, इतनी उसकी मालूमात नहीं होती, तो वो अगर इस तरह से उसकी जुबान खुलनी शुरू हो गई तो खुद ब खुद एक बेबरकती उसके अंदर पैदा होगी इल्म के अंदर, वो इल्म से दूर होता चला जाएगा। जब एक मामूली से एक उस्ताद के लिए, कहा आपको पिछली मरतबा बताया गया था कि जनाब उससे इतनी बेबरकती होती है कि उसके इल्म की नूरानियत खत्म हो जाती है, तो उलमा उससे भी बढ़कर हत्ता कि मुज्तहिदीन तक के खिलाफ इस तरह की गंदी जुबानें हमको जो है वो सुनाई देती हैं माशरे के अंदर। तो इससे भी अपने आप को हत्ता इम्कान बचाना, चाहे आपको कोई बातें उनकी पसंद भी नहीं आ रही हो तब भी अपनी जुबान को कंट्रोल रखें, वरना ये एक बेबरकती पैदा करेगा, नूरानियत आपकी कम से कम होती चली जाएगी। अच्छा, अब जो भी आप सीखें इसका एक हल ये भी है, उससे याद रखने में भी बहुत सहूलत मिलती है, वो ये है कि आप जो भी सीखें उसको दूसरों तक जल्दी पहुंचाएं, मसलन जितनी भी चीज़ें, मसलन आपको बहुत सारी आज टिप्स मिली हैं कि जनाब रोज़ाना 11 मरतबा सुबह और शाम के अंदर सूरह तौहीद की तिलावत करने का ये फ़ायदा है, और आयतुल कुर्सी पढ़ने का ये है, सनुक्रियो का फला तंसा हाफिजे के लिए, बहुत सारे इस तरह की अगर आप एक्सट्रैक्ट निकालें तो एक सफ़े के ऊपर पूरे दर्स का आपके पास खुलासा आ सकता है। अब आप ये ना गाहे बगाहे लोगों को, अपने साथ घर वालों को, क्लास फेलोज को, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी जगह पे जा रही हैं वहां लोगों को बताने की, तो इससे आपको एक तो ये हमेशा के लिए चीज याद रहेगी और एक तबलीग भी साथ साथ होती जाएगी। तो देखिए इसके अंदर ये है कि उसके लिए बहुत प्रोटोकॉल का वो ना सोचें कि वो हो आपको बुलाया जाएगा जनाब, गाड़ी आपको लेने के लिए आएगी और उसके बाद आप उसमें बैठ कर जाएंगी और उसके बाद वहां पर एक खास आपका आवभगत होगी तो आप मेंबर में बैठ के जनाब जो है वो इस्लाम की तबलीग करेंगे, लेकिन वैसे चलते फिरते उठते बैठते जो है वो तबलीग नहीं करेंगे आप। देखिए उलमा को हम देखते हैं बाकायदा, जैसे अफ्रीका वगैरह के अंदर लोग तबलीग के लिए जाते हैं। अच्छा अफ्रीका में भी आप देखें कुछ नहीं है, अब ये आप कोई कहे कि जनाब हमें तो बहुत आलीशान कोई मस्जिद इमाम बारगाह वगैरह मिले, लोगों ने क्या कि यही यहाँ पे पीछे कुछ बैनर लगा है, नीचे एक दरी टाइप की बिछाई और उसी के ऊपर ही जो है वो क्लास हो रही है, वहीं पर एक मजलिस का भी अहतमाम हो गया, वहीं पर दर्स का अहतमाम हो गया। तो सादगी के साथ भी ये तमाम चीजें जो पहुंचाई जा सकती तबलीगात, तो अब देखें उलमा वहां पर जाते हैं, कितने उलमा हैं जो किसी मुल्क के थे, जैसे काजी नूरुल्लाह शुस्तरी को कहा जाता है कि जनाब वो अफगानिस्तान के थे, फिर मशहद शिफ्ट हो गए थे, फिर मशहद में वहां पर इंडिया के कुछ मुसलमान देहातियों का एक ग्रुप वहां पर ज्यारत के लिए आया और उन्होंने आकर कहा कि जनाब काजी नूरुल्लाह शुस्तरी से जो शहीद सालिस के नाम से मशहूर है कि आप अगर वहां पर चले, हमारा इलाका ऐसा है वहां पर तो कोई ना नमाज जनाजा पढ़ाने वाला है ना गुसल देने वाला है, तो वो बाकायदा तड़प गए कि मैं यहाँ मशहद में क्या कर रहा हूँ, मुझे जो तो इस्लाम की तबलीग करनी मुझे वहां जाना चाहिए। तो वहां से वो उठे और उनके साथ वहां पर वो आ गए इंडिया, और आगरे में जैसे कि आपको इल्म ही है कि उनका वहां पर शहीद सालिस का जो है वो मज़ार है, बाद में वो शहीद भी किए गए और बहुत बेदर्दी के साथ शहीद किए गए और बाकायदा उनकी गुद्दी में सुराख करके जबान खींची गई और जलते हुए तेल के कढ़ाओं के अंदर उनको डाला गया, बहुत यानी उलमा ने वो बर्दाश्त किए। लेकिन कहाँ का रहने वाला, कहाँ तबलीग के लिए कहाँ पहुँच गया। अब आप देखिए मसलन ये अफ्रीका के अंदर कोई आलिम दीन है, वहाँ अपने वतन जगह छोड़ के वहां उन लोगों को वजू सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, तो तबलीगात के अंदर जो है वो हर वक्त लग्जरीज और इन चीजों का ना सोचें। जहां मौका मिल जाए, कहीं किसी ऐसी पसमानदा जगह का मौका मिल जाए, जाहिल पढ़े चाहतने पढ़े लिखे अफराद ना भी हों उस जगह पे, बिल्कुल नाख्वानदा टाइप के हों, वहां आपको दीन का कोई बात बताने का मौका मिल जाए, उनको वो कम से कम लोगों को वजू सिखा दें, नमाज सिखा दें, छोटे मोटे अहकाम उनको जो है इस तरह अल्लाह के अहकाम तो खैर सारे बड़े हैं, यानी जो आसान से हल्के फुल्के तरीके से जो लोगों को बताए जाते हैं वो सिखाएं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब आप देखिए मसलन ये शख्स जो है ये इंडिया का एक डर्मेटोलॉजिस्ट है जिसका नाम शंकर है, इसने कोई बहुत बड़ा हाई फाई क्लिनिक नहीं बना है, डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन क्या है कि किसी भी जगह इस तरह से बैठ जाता है आकर, लोग लाइन बना के इसके पास आते हैं कि इतना बड़ा स्पेशलिस्ट होने, 2 रुपए शायद इसने अपनी जो है ना फीस रखी हुई है और रोजाना कई 100 मरीज इस तरह से देखता है, यानी दीनी खिदमत का जज्बा है उसमें, एक हाई फाई क्लिनिक्स और उससे लोगों से वसूल करना और ये सब कुछ कुछ नहीं रखा है उसने। तो ये सिर्फ एक ऐसी आपको बताने के लिए कि दीन की तबलीग हो या मसलन कोई और खिदमत इंसान को अंजाम देनी हो तो जरूरी नहीं कि बहुत आप लोग आमतौर पर यही करते हैं कि जनाब कैसे तबलीग करें, मदरसा तो मदरसा बड़ा पुरशिक होना चाहिए, और अगर किसी से तबलीग के लिए जा रहे हैं तो लाने ले जाने का सिस्टम क्या है और कौन सी गाड़ी लेने आएगी और कौन सी गाड़ी छोड़ने जाएगी, और एक उसके अंदर इतने लवाजमात हम ले आते हैं कि वो फिर तबलीग एक तरफ रह जाती है और गैर इलाही नीयतें उसके अंदर ज्यादा हो जाती हैं। तो उस लिहाज से तो दीनी तालिब इल्म हो या उनको तालीम देने वाले जो अफराद हों, जब भी मिलता है रिवायात के अंदर कि वो खैर के अंदर बराबर के शरीक होते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखें आमतौर पर तालिब इल्म इसमें बहुत परेशान होते हैं कि हमारे रिस्क का क्या बनेगा, हालांकि अल्लाह उनके लिए इस तरह का इंतजाम करता है कि रिस्क से दूसरे लोगों के जिम्मे उसका रिस्क लगा देता है, इनको खुद कुछ नहीं करना पड़ता और गैब से इन तालिब इल्मों की इमदाद होती। तो घरेलू तमाम उमूर के साथ भी ये सब चीजें हो सकती। आमतौर पर दिमाग में वही आता है ना कि भाई हम कैसे इन तमाम घरेलू जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं, इसमें हम कहाँ इल्म हासिल करें। ये आयतुल्ला नूरी हमदानी रोजाना ग्रॉसरीज लेते हैं अपने घर में खरीद के लेके, घर के भी तमाम उमूर इसी अंदाज से जो है वो अंजाम देते हैं, और उसके बाद जो है वो दरस खारिज और ये और जितनी दीगर मरजियत की जो मसरूफियात हैं वो अपनी जगह पर रहती हैं। तो एक लिहाज से आपके लिए भी कि ये सब चीज़ें तो सबके साथ हर शख्स के पास कहा जाता है ना कि एक वाहिद परवरदिगार की एक ऐसी नेमत है जिसमें सब बराबर जिससे लोगों को उसने दी। मसलन दौलत ऊपर नीचे हो सकती है, इज्जत ऊपर नीचे हो सकती है, इल्म ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, वक्त के जो 24 घंटे रोजाना है सबको बिल्कुल बराबर दिए गए। नबी खुदा के पास भी उतने ही हैं, इमाम के पास भी उतने ही हैं, उलमा और मुज्तहिदीन के पास भी उतने ही, एक आम आदमी और एक जाहिल के पास भी उतना ही वक्त है। अब कोई अपने उसी वक्त को सही यूटिलाइज करके एक मुकाम तक पहुंच जाए, अपने आप को उसी वक्त के अंदर अपने आप को बना ले, तो उसके अंदर आप देखते हैं कितने बड़े बड़े लोग जो पैदा होते हैं उसी वक्त को सही इस्तेमाल करके पैदा हो जाते हैं, वरना उनसे दुगनी उम्रों के लोग भी इसी तरीके से नसीहन मनसिया पता भी नहीं चलता लोगों को कहाँ गए, कब पैदा हुए और कब इंतकाल कर गए। तो घरेलू कामकाज के साथ भी सब चीज़ें चल सकती हैं। देखिए तालिब इल्म एक और भी चीज़ है कि जितनी अपने अंदर इज्जो इनकसारी पैदा करेगा और तवाज़ो पैदा करेगा उतनी ही उसके अंदर नूरानियत पैदा होगी। तालिब इल्म कहीं भी देखें अक्खड़ मिजाज हो रहा है, उलमा के साथ बदतमीजी पे तुला हुआ है, अपने बुजुर्गों के साथ ज़रा थोड़ी सी इल्म हासिल हुआ उसको और हर शख्स को वो जाहिल गंवार और जो है वो समझना शुरू हो जाए, तो ये इसका मायने है कि इसके अंदर अब तकब्बुर इल्म का पैदा होने लगा और ये इसके अंदर से नूरानियत को बिल्कुल ख़त्म करके रख देगा। तो तालिब इल्म हमेशा मुनकसरुल मिजाज रहे, हमेशा तवाज़ो और इनकसारी के साथ रहे, अपने से बुजुर्ग जो बात चाहे वो गलत भी क्यों ना कर रहे हों बड़े तहम्मुल से उनको सुने, बहुत इज्जत एहतराम के साथ उन तक बात को पहुँचाए, लेकिन आम तौर पर देखने में आता है कि वो बदतमीज़ और अक्खड़ मिजाज हो जाता है, मुतकब्बिर हो जाता है। इससे अपने आप को बचाना है वरना ये नूरानियत को ख़त्म कर देगी ये चीज़। और खिदमत खल्क भी उसके साथ साथ, कितने उलमा हैं कि खिदमत खल्क भी साथ साथ करते हुए जो है वो नज़र आते हैं। अगली चीज़ ये है कि जो सबसे अहम है उसके साथ तो कोई चीज़ नूरानियत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, अगर गुनाहों को तर्क ना करे, गुनाहों को तर्क ना करे। देखिए गुनाहों को उलमा एक चीज़ बड़ी अच्छी कहते हैं कि गुनाह जो है फकत तमन्ना करने से कुछ नहीं होता जब तक कि अमली इकदाम ना किया जाए। मसलन हर शख्स की तमन्ना है कि मुझसे गुनाह ना हो, जैसे अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई मर्ज लाहक हो जाए, टीबी हो जाए जैसे किसी को, अब वो बैठ के सिर्फ वो टुसवे बहाता रहे, सिर्फ रोता रहे, लोगों से शिकायतें करता रहे, फोन कर करके हर एक को अपनी अलामतें बताता रहे, क्या उसका मर्ज कभी ठीक होगा? कभी भी ठीक नहीं होगा। भाई जाओ डॉक्टर के पास जाओ, उससे इलाज लो, गोलियां खानी शुरू करो, चंद महीनों के अंदर तो मुकम्मल सेहतियाब हो जाओगे। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ तमन्ना करते हैं। जैसे हमने एक दफा यहां दरस हुए थे तो उसमें बात आई थी कि हमें मुतमन्नी नहीं होना चाहिए, मुरीद होना चाहिए। मुतमन्नी कहते हैं तमन्ना करने वाले को, ख्वाहिश रखने वाले को, मुरीद कहते हैं साहिब इरादा को। साहिब इरादा, इरादा कर लें कि मैं गुनाह नहीं करूंगी, फला फला वाकई मेरे अंदर कमी, मैं अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रख पाती, मैं गुस्से में आ जाती हूँ, या मसलन मैं गीबतें मुझसे ज़्यादा होती हैं, झूठ मैं अक्सर बोल देती हूँ, इल्ज़ाम मैं अक्सर लोगों के ऊपर लगा देती हूँ, अपनी ज़ुबान को उस लिहाज से। तो हर शख्स मैं हिजाब में कभी कमी कर देती हूँ, तकरीबात जाती हूँ उसमें तकरीबात में मसलन मेकअप करके चली जाती हूँ, अपने आप को नहीं रोक पाती, मुख्तलिफ जो इस तरह के गुनाह हैं तो हर शख्स अपने अंदर महसूस कर सकता है कौन से गुनाह। तो इंसान को चाहिए कि अपने से अहद कर ले कि मैं ये फुला फुला गुनाह तो मुझके मेरे अंदर पाया जाता है, ये मैं मुझसे ना होने पाए, गुनाहों का तर्क। अच्छा उसके लिए भी कुछ तरीके भी हैं जो कि अभी तो नहीं हमारे यहाँ मुसलसल उसके ऊपर कई कई नशिस्तों के अंदर गुफ्तगू हो चुकी है गुनाहों को तर्क कैसे करें। उसमें यह कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामी तरीक़ेकार हैं। मसलन आप ये कह देंगे अगर फला दोबारा मेरे मुझसे अगर गीबत हुई तो मसलन मैं एक महीने तक पूरी पाबंदी के साथ 11 रकत नमाज शब जरूर पढ़ूंगी, अगर बिलफर्ज अगर आप यानी आप नजर कर लें, कसम खा लें, अहद कर लें कि मैं ये काम करूंगी। अगर मुझसे गिबत दोबारा हुई तो मैं खत्म कुरान पूरा करूंगी। या मसलन अगर मुझसे फला गुना दोबारा हो गया, बेहिजाबी का हो गया या कोई और गुना हो गया, तो मैं इतना सदका देने की नजर मान लेंगे जो आपकी तबीयत पर शाख गुजरे। मसलन मैं 5,000 रुपये सदका दूंगी, मसलन मैं वैसे कह रहा हूं। तो अगर चाहे वो अच्छा, जब इतनी अमाउंट जेब से निकलेगी ना आपकी, तो एक दफा होगी, दो दफा होगी, तीसरी दफा लाजमी आप रुक जाएंगे, लाजमी रुक जाएंगे। तो देखिए शैतान का भी देखिए हर भाई, इमाम खुमैनी बड़ा अच्छा कहते थे कि शैतान, आप देखती हैं कि शैतान क्या करता है कि आपको वजू में वसवसों में मुबतला करता है, शक डालता है, आपको बार बार वजू करवाता रहेगा, नमाजें बार बार पढ़वाता रहेगा। लेकिन इमाम खुमैनी बड़ा अच्छा जुमला फरमाते थे, मालियात में शक नहीं आने देता। मसलन कभी नहीं होता कि शायद मैंने खुमसना निकाला हो, चलो दोबारा निकाल दूं, शायद मेरा हज गलत हो गया हो, चलो एक दफा और हज कर लेता हूं, या शायद मैंने फलां को पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए मैं दे देता हूं उनको दोबारा, शायद मैंने ना दी। नहीं, इसमें कभी आपको शक नहीं आने देगा, ये आपको सिर्फ उसके अंदर वसवसों के अंदर डालेगा। तो इतना कम से कम आप नजर कर लें, कसम खा लें, अहद कर लें कि ये जो गुनाह मुझसे हो रहा है, अगर मुझसे दोबारा हो गया, तो कम से कम हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसको शाख और बहुत बड़ा लगे कि ये बड़ी अमाउंट मेरे पास से जा रही, इस तरह की कोई मन्नत सदके में जो वो वाजिब हो जाएगा देना उसको, अगर उसने मुखालफत उसकी की। तो उलमा फरमाते हैं कि ईशा एक आध दफा ही उससे मुखालफत होगी, उसके बाद खुद उसका नफ्स मजबूर करेगा, अरे रुक जाओ खबरदार, वरना इतने 1,000 रुपए देने पड़ जाएंगे, ये इतनी नमाजें पढ़ना पड़ेंगी, या इतने रोजे रखने पड़ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के तरीके भी हैं जो शरई तरीके हैं, कोई शरई रियाजतें हम इस सिलसिले में कर सकते हैं, कोई गैर शरई टाइप की कोई मन्नत इस तरह से जो है वो नहीं मानी जा सकती। तो नूरानियत के एतबार से इंसान अपने आप को गुनाहों से जो बचाता है, तो उसके अंदर एक वही जो अभी मैंने इससे पहले आपको आयतुल्ला वहीद खुरासानी के हवाले से भी बताया कि जो 11 मरतबा सूरह इखलास सुबह के वक्त भी अगर पढ़ेगा तो उसके मुताल्लिक ही कहा जाता है कि ख्वाह उस दिन शैतान कितना ही जोर क्यों ना लगाए, उसको कोई गुनाह नहीं करवा सकेगा। अगर कोई नमाजे सुबह के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करता है, 11 दफा सूरह इखलास, शैतान ख्वाह कितना ही जोर क्यों ना लगाए, कोई गुनाह नहीं करवा सकेगा उस दिन उससे। तो इंसान को मुख्तलिफ ये इल्म हासिल करके ऐसी चीजें जो टिप्स हैं उलमा और मुज्तहिदीन मराजे ने बताई हैं, ये उसको दिमाग में अपने रखनी चाहिए कि ये मैं इन चीजों से इस्तेफादा करूं और अपने आप को इन चीजों से बचाऊं। एक चीज और भी है, वो आयतुल्ला बहजत भी कहते थे और बड़े उलमा इसको रफा तो खास तौर पर उसको बड़ी ताकीद करते हैं, वो भी नमाज फजर के बाद ही है, और वो है अपने सीने पर हाथ रखकर 70 मरतबा या फत्ता हो पढ़ना, अल्लाह का एक नाम है या फत्ता हो, 70 दफा, और उसके बाद अपने अपने ऊपर फूंक भी उसको मारे, तो उसके कल्ब के अंदर एक नूरानियत पैदा होती है, उसके कल्ब के अंदर एक मानवियत पैदा होने लगती है, गुनाहों से इंसान अपने आप को बचा दे। या फत्ता हो, फे ते अलिफ बड़ी है और उस पर तजदीद जो होती, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, अब तालिब इल्म के लिहाज से एक और चीज ये है कि तालिब इल्म आमतौर पर हमको नजर ये आता है कि मेहनत करते हुए नहीं नजर आते, मेहनत उन्हें खूब करनी। खैर, अभी इसके ऊपर हम तफसील अभी थोड़ी सी और आगे आएगी। देखिए, उलूम के फरोग के एतबार से भी अगर कोई साहिब इल्म काम करे, मसलन अगर आप, एक जमाना था मजालिस से अजा में एक ट्रेंड हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं इस दफा कुछ कम हो गया, कुछ तो हमारे कुछ हम ख्याल दोस्तों ने भी चीज शुरू की थी कि मजालिस में खाने वगैरह तो बिल्कुल ऐसी चीज खिलाएं उसमें कोई तबरुक वगैरह बांटना, खाने की चीज देना, उसको कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, एडिशन कर दें उसमें। मसलन है कि किताबों की तकसीम, किताबचों की तकसीम, इल्म के फरोग के लिहाज से एक तबरुक की किस्म ये भी बन सकती। मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था, तस्वीरें भी देखी नहीं उसकी, अभी तो मेरे पास नहीं है, कि एक मुल्क के वेस्टर्न कंट्री में किसी एक मुल्क के उस्ताद का इंतकाल हुआ, तो लोगों ने जो उसके लिए एक जिसे मजलिस तरहीम कहें, बहरहाल वहां तो ये वाली मजलिस नहीं होती, एक जगह जमा होकर उनको याद करने के हवाले से एक प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा कि हम बजाय इनके लिए फूल लेकर आए, हम ये करेंगे कि एक एक हर शख्स जो है ना किताबों से भरा हुआ एक बैग लेकर आएगा, और हम जो है ये किताबों का बैग उनकी याद में उनकी तरफ से किसी गरीब तालिब इल्मों को। तो तकरीबन 100 अफराद वहां पर आकर जमा हुए और तकरीबन 100 बैग्स वहां पर किताबों से भरे हुए वहां पर आए और उसके बाद गरीबों में तकसीम हो गए। तो बहरहाल ये देखिए चीजें होती हैं कि फूल रखने से क्या, सिर्फ फूल रखने से इंसान आप खुद जाती तौर पर ही खुश होता है, वो भी ठीक है करें, उसकी कोई ममानियत नहीं है। लोग आमतौर पर इफरातो तफरीत का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं नहीं ये फूलों की भी कोई जरूरत नहीं है और कब्र पर फूल डालने की भी कोई जरूरत नहीं, नहीं अपनी जगह फूल डालने से मेरा आपका दिल खुश हो जाता है, डालिए। लेकिन बहरहाल ये कि ये वाली चीजें भी इसके साथ साथ अडॉप्ट करें, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है कि हम किसी राइज रस्म के खिलाफ जाकर और एक माशरे में एक तूफान बरपा कर दें, बल्कि ये है कि उसके अंदर एडिशन कर दें चीजों का। मसलन एक तरीक़ेकार ये भी है कि किताबों के फरोख के एतबार से तो इल्मी तरक्की आमतौर पर देखने में ही आता है कि लोग सोचते हैं, यानी हम पूछते हैं कि सबसे सस्ती वाली किताब बताइए कौन सी है, जब कहते हैं जनाब 25 रुपए की है तो वो 25 उसमें भी डिस्काउंट करवाया जाता है। मदरसे में लोग आते हैं बांटने के लिए किताबों के लिहाज से, तो उनको सबसे सस्ती तरीन चीज़ यानी, बाकी अगर कुछ कहेंगे जनाब कितनी देगे बन रही हैं हलीम की, तो बताएंगे कि 15 देगे हैं, कि यहाँ बहुत से लोग तो 100-100 देगे वाले प्रोग्राम भी करते हैं चोली में। तो बहरहाल वो उनका अपना है, उसमें कोई एतराज और उसकी बात नहीं है, लेकिन एक थिंकिंग के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर तो बहुत ज्यादा पैसा लोग खर्च करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब इल्म के फरोख की बात आ जाए तो वहां पर उनको 30-25 रुपए भी जो बहुत ज्यादा लगते हैं एक किताब के, और वही कहेंगे जनाब 30 रुपए का मसलन शीरमाल भी है तो वो क्या वो दो दो शीरमाल भी हर एक को देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन किताब नहीं। तो ये एक चीज है, इसको फरोख देना चाहिए। तो देखिए किताब के मुतालिक कहा जाता है कि ईसाले सवाब की मजालिस के अंदर खसूसी तौर पर, उस वक्त तो देखिए बहुत से लोगों का दिल भी बड़ा नरम होता है, कहा जाता है कि ईसाले सवाब की मजलिस वो वाहिद मजलिस है कि जो कि जिसमें कोई अगर दहरिया रिश्तेदार भी है ना, जो अल्लाह को भी नहीं मानता रसूल को भी नहीं मानता, वो भी उस मजलिस में उसको आना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे अफराद होते हैं जो पूरे साल मजालिस में, हत्ता कि अशराए उला की जो मजालिस मुहर्रम की होती हैं उसमें भी लोग आमतौर पर बहुत से अफराद नहीं जाते हैं, लेकिन रिश्तेदारों की ईसाले सवाब की मजलिस में उनको मजबूरन आना पड़ता है। तो इसका भी कोई स्पेशलाइजेशन इसके अंदर कर ले और अपने आप को इसमें कि उसका मवाद ऐसा तैयार करके लोग आपको कहेंगे जनाब ईसाले सवाब की मजलिस फला जाकरा को बुलाओ, वो सबसे बेहतरीन पढ़ती। इस तरह की इस अंदाज की दिल को जो है मुनकलिब कर देने वाली मजलिसें कि लोग अमल और रगबा, अच्छा उसमें हर शख्स देखिए मौत की जो मजलिसें होती हैं आमतौर सोएम की, 40वें की, बरसी की, उसमें लोग मौत की तरफ जरा सुनने को तैयार होते हैं उसका मैटर, उन लोगों को भी पता होता है ईसाले सवाब की, तो उसमें तबलीग का बहुत अच्छा मौका आपके पास होता है। तो उसमें स्पेशलाइजेशन पैदा कर बनिस्बत एक अमूमी किस्म की मजलिसें, महारत जो है वो अगर इस सिलसिले में आ जाए तो आपकी एक स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगी। अच्छा इसमें जाहिर है किताबों के लिहाज से भी एक बात और बता दूं कि जाहिर है कि आम तौर पर एक ट्रेंड और भी हो गया, लोग फौरन कहते हैं भाई हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए फला बुक की, यानी बस हमें इंटरनेट पे इधर उधर मिल जाए, नहीं आपके पास अलग से किताबों की भी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए घर पर, चाहे छोटी सी लाइब्रेरी हो। देखो कि ये उचटती पुचटता सा तरीका होता है, इंटरनेट पे गए और ऐसी किताब को किसी को वर्गर्दानी की, जो पूरी किताब हाथ में होती है इंसान इसको शुरू से आखिर तक पढ़ता है उसके अंदर ज्यादा गहराई होती। तो वैसे अगर इंटरनेट पे कोई किताब तलाश करनी है तो बहरहाल उर्दू के अंदर हमारी जो ziyarat.net के नाम से एक वेबसाइट है उसके अंदर बहुत किताबें, ziyarat ziyarat ziyarat.net। तो बहरहाल अगर आप ziyarat.net के ऊपर जाएं तो आपको बेशुमार किताबें तकरीबन हर मौजू के ऊपर ही जितनी उर्दू में किताबें अच्छी खासी हमने देखा है कि उसके ऊपर मौजूद हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट है, लेकिन कुछ किताबें आपके पास वैसे भी अलग से भी होनी चाहिए। अच्छा अब अपने रूहानी और इल्मी तरक्की के लिए, नूरानियत पैदा करने के लिए उलमा फरमाते हैं कि खास तौर पर जो खास अय्याम हैं और उन खास अय्याम की जो रातें हैं उनसे आप भरपूर इस्तेफादा करें। मसलन शब कदर आती, शब कदर कबूलियत की सारे साल के अहकाम लिखने की रात होती है, तकदीरों की रात होती है, उस रात को अलल खुसूस अपने इल्म और अपने नूरानियत के लिहाज से स्पेशली दुआ करें। कितनी और इस तरह की मुकद्दस रातें और आती हैं, शब ईद भी उसमें से एक रात है, और कुछ महीने ऐसे हैं जैसे रजब, शाबान, रमज़ान कुछ अरसे में बाद आने वाले हैं, उस लिहाज से शब ईद गदीर है, या इस तरह की कुछ जो ख़ास अयाम और ख़ास रातें हैं उनके अंदर अपने इल्म के लिहाज से आप ज़रूर दुआएं करनी चाहिए। और उलमा हम देखते हैं कि वो शब कदर का भी जो सबसे बड़ा अमल बताया गया है वो कि उस रात को भी इंसान उलूम दीनिया के अंदर बसर करे। उलमा या आयतुल्ला शुबैरी जंजानी मौजूदा जिंदा मराजे में से एक हैं, माशाल्लाह हयात हैं, तो उलमा की अपनी सीरत में भी ये चीज़ मिलती है कि वो शब कदरों के अंदर भी इल्म के को हासिल करते हैं और उसको उसके फ़रोग के लिए गुजारते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी उलमा कहते हैं कि ख़ास तौर पर वो ये कि तमाम उलूम और मौजूआत के अंदर आप इल्म फ़िक़ा के अंदर ख़ास तौर पर कोशिश करें कि महारत, इल्म फ़िक़ जिसे कहा जाता है या आप आम तौर पर फ़िक़ा के नाम से मारूफ है। तो आयतुल्ला बहजत भी कहते थे कि अल्लाह से इर्तबात का तरीक़ा अल्लाह और इमाम ज़माना की इताअत करना है। और इताअत कैसे होगी? अपने मर्जे के रिसाले अमलिया पे अमल करने से, यानी एक एक आपका जो अमल है वो आपके मुज्तहिद आलम के फतवे के मुताबिक उससे हटकर नहीं होना चाहिए। तो गोया ये कि आपने अपने ज़माने के इमाम की भी इताअत कर ली, तो अपना इर्तबात इससे आपको रिसाले अमलिया से बढ़ाना। रिसाले अमलिया से मुराद फ़कत तौज़ील मसाइल नहीं, यानी उनके दीनी अहकाम तौज़ील से में भी होते हैं, दीगर किताबों के अंदर भी होते हैं, उनके इस्तफ़तात वगैरह के अंदर भी होते हैं। तो ये खास तौर पर, और कहा यह जाता है कि देखिए उलूम वैसे तो इंसान इल्म तफसीर में किसी का खास इंटरेस्ट है वो भी हासिल करे, बहुत बड़ा इल्म है, कुरान का इल्म, तफसीर का इल्म, अहादीस का इल्म, अखलाकियात का इल्म, अकायद का इल्म और तारीख का इल्म वगैरह, लेकिन क्या है कि एक जो खसूसी एक बरकत और एक नूरानियत है वो इल्म फ़िक़ के अंदर, मसाइले फ़िक़ के अंदर ख़ास तौर पर आप कोशिश करें कम से कम उसमें अपनी। अच्छा, किसी भी जगह आप जाती हैं ना तो लोग आपसे शाज़ो नादिर कोई तारीख़ का मसला पूछेगा, शाज़ो नादिर कोई आपसे अकायद की कोई दलाइल का पूछेगा, तफसीर नुकात शाज़ो नादिर कोई पूछेगा, लेकिन जहाँ कहीं आप जाएंगी आलिम हो या कोई भी उससे लोग फ़िक़ी मसला ज़रूर पूछने आते हैं कि जनाब ये वाला मसला है, हमें ये वाला मसला बता दें। तो इसके अंदर एक खसूसी महारत आपको पैदा करनी चाहिए और ये वाकईतन नूरानियत भी पैदा करती है। और दूसरी एक और खसूसियत इल्मे फ़िक़ के अंदर ये कि उलमा कहते हैं कि ख़ास किस्म की फ़िक़ा के अंदर एक बरकत है कि जो भी इसके अंदर ज़्यादा अपने वक्त को लगाता है उसके माली बहुत सारी मुश्किलात हल होती हैं, जिसमें सर फहरिस्त माली मुश्किलात का हल, यानी गैब से अल्लाह उसके लिए इंतज़ाम करता है। ऐसा शख्स कभी रोज़गार के सिलसिले में परेशान नहीं होगा, रिस्क के सिलसिले में परेशान नहीं होगा, यानी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि महसूस की गई है कि इस तरह की ख़ास बरकत इस इल्म के अंदर। तो कोशिश करें कि इसके अंदर आप खसूसी तवज्जो दें, दीगर उलूम के साथ साथ इसको खसूसियत के साथ हासिल करें, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, और एक और चीज़ जो तालिब इल्म को और एक आम मोमिन के लिहाज से भी लेकिन दीनी तालिब इल्म के लिए और ज़रूरी है, ज़्यादातर औकात में बावजू रहना, ज़्यादातर औकात में मदरसा आने से पहले आप हत्ता उल इम्कान जितना भी मुमकिन हो सके वजू को बचाते हुए इस वसवासे की हद तक भी ना जाएं कि हर 5-10 मिनट बाद वजू करने के लिए जा रहे हैं, एक अजीब वसवासी कैफियत हो रही है, नहीं, ज़्यादातर औकात के अंदर कोशिश करेंगे बावजू रहें, ख़ास तौर पर अगर कोई आदमी सोने से पहले भी अगर वजू की आदत डाल ले किसी जगह, जैसे अभी तस्वीर आपके सामने मसलन आलिम कहीं गए हुए हैं, तो वजू तजदीदी भी एक चीज़ होती है, यानी अभी ज़रूरी नहीं कि वजू टूटा ही हो किसी का, लेकिन नमाजों का वक्त आगे वजू किया हुआ हम एक वजू और कर लें, अल वजू अल अल वजू नूर अल नूर, एक नूर के ऊपर एक और नूर हो जाएगा। बहुत से उलमा तो इस हद तक थे, जैसे हमारे गुजरे आयतुल्ला बाकर वहीद बहबहानी जिन्हें उस्तादुल कुल फिल कुल कहा जाता है, 98 साल की इनकी उम्र हो गई थी, 98 ईयर्स, सोचें। और उसमें भी 98 साल की उम्र में भी शरह लोमा का दर्स देते थे, और बाकायदा अखबारी फिरके को जो शिकस्त फाश दी थी वो आयतुल्ला बाकर वहीद बैबहानी ने दी थी। उसके बाद से आज तक अखबारियत पनप नहीं सकी। आजकल जितने भी अखबार हैं ज़्यादातर वो जाली अखबारी शुमार होते हैं, यानी लेकिन असल जो सफ को दरहम बरहम किया था वो आयतुल्ला बाकर वहीद बैबहानी ने किया था। 98 साल की उम्र में भी दर्स देते थे। ये इस हद तक इन चीज़ों से आगाह हो गए थे कि अपने बहुत से शागिर्द जो तहारत के आलम में नहीं होते थे उनको बाकायदा पैसे दे के कहते थे जाओ हमाम जाओ और गुसल करके आओ। वो कहते थे कि वो मानवियत और वो जिस तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, वजू नहीं है तो वजू करके आके बैठो, गुसल नहीं है तो गुसल करके आके बैठो, तब हम मेरे दर्स में आओ। और जो और इस हद तक पहचान रखते थे कि वो खास शागिर्दों को पॉइंट आउट कर लेते थे कि कौन वजू और गुसल से नहीं, और बाकायदा भेजा करते थे। वो कहते थे कि खास मानवियत एक नूरानी थे। ख्वातीन के अंदर जाहिर है ख्वातीन के अपने कुछ अहकाम होते हैं, जिस हद तक वो इसकी पाबंदी कर सके करें, और जहाँ पाबंदी नहीं हो पाती वहाँ पर मजबूरी है, लेकिन उसमें भी वजू करके मसलन दर्स वगैरह को तो जो है वो सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो इसका अलल खसूस एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से मसलन आयतुल्ला जव्वाद अंसारी हमदानी हमारे गुजरे, बहुत ही बड़े उरफा के अंदर से गुजरे, वो भी ये पहचान लेते थे कौन शख्स वजू से और कौन शख्स वजू से नहीं। पूरे पूरे बाकायदा लोग इनके पास आते थे, कभी घर में दावत भी करते थे तो ये खुद सबके हाथ धुलाते थे, और बाकायदा बगैर नाम लिए ऐलान भी करते थे कि सब लोग वजू से आए सिवाय एक शख्स के। तो बाज़ोकात ये भी होता है कि इस तरह से खासतौर पर इल्मी जो नशिस्तें उसमें खास एक नूरानियत इंसान के अंदर जो है वो पैदा हो जाती। बस मेरे ख्याल है कि अभी क्योंकि दूसरा आगे अगला लेक्चर भी इस सिलसिले में होना है, मौलाना डॉक्टर शेख मोहम्मद अलीम साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके होंगे, और मेरा तो इरादा था कि आज बस इसको दूसरे दर्स के ऊपर इस सिलसिले को नूरानियत वाले को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद आधा भी मैं मुकम्मल नहीं कर सका, बात से बात निकलती चली गई। लेकिन क्योंकि इतना अहम है कि सारी ज़िंदगी सब चीज़ें आपके काम आएंगी, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको तीसरे जो दर्स होगा उसमें इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये क्योंकि इतना गैर अहम नहीं है, आपने देखा कि इसमें कितने पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको आम ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे, इनके ऊपर अगर आप अमल करें तो एक नूरानियत पैदा होती चली जाएगी, और फिर बाकी ज़िंदगी उलूम हासिल करने का जो दौरानिया है उसमें बहुत बरकत आएगी, बहुत जल्दी आप कैच करेंगी उलूम की बातों को, और रुकावटें कम से कम होंगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आता है ना इंसान खासतौर पर मदारिस वगैरह के अंदर, तो शैतान के लिए इतना परेशान कुन है ये बात कि वो कितने हरबे इस्तेमाल नहीं करेगा, बाज़ोकात आपके घर वालों को इस्तेमाल करेगा कि आपके लिए रुकावटें खड़ी करे, परेशानियां खड़ी करे कि आपका मदरसे आने का सिलसिला रुक जाए। तो शैतान को भी शिकस्त फाश देनी है, तो इन्हीं अस्कार तवस्सुल और उन तमाम चीज़ों से देनी है जो कि अभी आपने सुने हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ बातें और रह गई वो अगली नशिस्त के अंदर बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन।